वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्कटु गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। कान्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो कल हमने चर्चा की किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म क्षेत्र में ब्राह्मण का उद्धार किया और भगवान जब कूर्म क्षेत्र से निकले ही थे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में आगे लिखते हैं कि एक और ब्राह्मण जिनका नाम था वासुदेव, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही विशेष कृपा इन ब्राह्मण के ऊपर की और हम साधकों के लिए, आज मैं प्रसंग जब पढ़ रहा था तो यही मैं सोच रहा था कि हम साधकों के लिए जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहते हैं, हमें वासुदेव का जो उदाहरण है, इन ब्राह्मण का उदाहरण, इनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। और बहुत ही सुंदर तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने लिखे हैं इन प्रसंगों के ऊपर। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं वासुदेव उद्धार की कथा, सबसे पहले वासुदेव ब्राह्मण का गुणगान करते हुए। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलित कुष्ट ताते कीड़ामय। वो कहते हैं वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण द्विज, और उनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाशय उल्लेख कर कह रहे हैं कि वो न केवल द्विज थे, न केवल वो एक ब्राह्मण थे, बल्कि वो एक महाशय भी थे। और इसी के साथ साथ इसी श्लोक में दूसरे वाक्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं हालांकि वो द्विज थे, हालांकि वो ब्राह्मण थे, महाशय थे, परंतु सर्वांगे गलित, उनका पूरा जो अंग था वो गला हुआ था। बाहरी रूप से उनका जो पूरा अंग था वो गला हुआ था। सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय, उनका अंग गला हुआ था और उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था, और कुष्ठ रोग भी ऐसा हुआ था उनको कि हर एक घाव, कुष्ठ रोग के घाव में जीवित कीड़े हुए थे, कीड़े पड़े हुए थे हर एक घाव में। तो पूरा अंग गला हुआ था और पूरे अंग में चारों तरफ घाव थे कुष्ठ रोग के, खुले हुए घाव जिनमें से पस आ रहा था बाहर, और इन घावों के अंदर थे जीवित कीड़े। ताते कीड़ा मय, तो यहां पर देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक ही श्लोक में वासुदेव ब्राह्मण का एक रूपांतरण दे रहे हैं, और वो देते हुए दर्शा रहे हैं कि बाहरी रूप से वासुदेव के जो रोग था उसके वजह से कीड़ों के अलावा और कोई उनके निकट नहीं आता था। यहां तक कि वासुदेव ब्राह्मण की परछाई तक पर भी कोई उनके निकट नहीं आता था, परंतु यहां पर वो कह रहे हैं उनको महाशय। ये सब होने के बावजूद वो महाशय थे। तो ये बता रहे हैं कि जो महानुभाव होते हैं, व्यक्ति की महानता कैसे परखनी चाहिए, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक में बता रहे हैं कि ज्यादातर इस भौतिक संसार में हम किसी व्यक्ति की महानता देखते हैं और व्यक्ति की महानता के विषय में कुछ कहते हैं, वर्णन करते हैं, जब बाहरी रूप से हम देखते हैं कि वो व्यक्ति दिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, शारीरिक रूप से बहुत महान है, भौतिक रूप से बहुत महान है, परंतु यहां पर जो प्रगत भक्त होते हैं उनका दृष्टिकोण देखिए, उनके दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्ति यहां पर देखिए, उनका जो शरीर था वासुदेव ब्राह्मण का शरीर, शरीर में पूरे कीड़े पड़े हुए थे, कीड़ों का निवास स्थान था उनका शरीर। परंतु वो महाशय क्यों थे, वो इतने महान क्यों थे, कि उनके हृदय में श्री भगवान का निवास स्थान था। हालांकि बाहर शरीर कीड़ों का निवास स्थान, परंतु अंदर जो हृदय था वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान था। और इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सुदृढ़, स्वस्थ और जो भौतिक आंखों के लिए अच्छा दिखने वाला हो वैसा होगा, परंतु जो भौतिक इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब वो कुष्ठ रोग के कीड़े के समान है। तो हालांकि एक भौतिकतावादी व्यक्ति बाहर से बहुत सुंदर दिखता होगा, परंतु हृदय जो है वो कुष्ठ रोग से, कीड़ों से भरा हुआ है। इसीलिए हमें शास्त्रों का श्रवण जब हम करते हैं तो शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को कैसे परखा जाए। जैसे एक घटना है, श्रील प्रभुपाद जी जब पेरिस में थे तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी के दो वरिष्ठ शिष्य भगवान महाराज और श्याम सुंदर प्रभु, तो एक दो दिन हुआ श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें देखा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि एक दो दिन से आपका दर्शन नहीं हो रहा, कहां हैं आप दोनों? तो उन दोनों ने कहा कि प्रभुपाद जी, हम आपके लिए एक बहुत विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, विशेष क्या कार्यक्रम? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से मिले हैं इस पेरिस के, जो बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, और हम उनसे एक आपका प्रोग्राम अरेंज किया है, आपके साथ मीटिंग अरेंज किया है। तो बस अब कुछ ही दिनों में, और ये जो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है इनके और भी बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, और इनके संबंध से जो कोई है व्यक्ति वो भी आ सकते हैं इस मीटिंग में। तो हम इसीलिए दो दिन थोड़े व्यस्त हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में आपने हमें देखा नहीं होगा, तो लेट होकर हम ये सब व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए। तो उनको लगा कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे कि हम लोग ये सब कर रहे हैं उनके लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे किसी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है कृष्ण भावना देने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहानी कही, एक कथा उन्होंने कही कि एक बार जंगल में एक सिंह था, और वो सिंह अपना एक दिन भोजन खाते खाते, और सिंह का भोजन क्या होता है, दूसरे पशु, तो सिंह अपना भोजन खाते खाते किसी पशु को जब खा रहा था तो पशु की जो हड्डी थी वो गले में अटक गई उस सिंह के। तो अब कैसे उसे बाहर निकाले, कोई पानी का ग्लास भी नहीं लाके दे रहा था, तो कैसे ना उसे अंदर ले के बाहर निकाले, अटक गई गले में। तो ये सिंह ने सोचा, भाई अगर ये हड्डी अटकी रहेगी तो आगे मजा नहीं आएगा खाने में। क्या कहावत है वो, कबाब में हड्डी। तो सिंह बोल रहा था, कबाब में हड्डी आ गई, अब गले में हड्डी आ गई, तो उपाय क्या किया जाए। तो सारे अन्य पशुओं से पूछा कि भाई कोई सहायता कर सकता है, ये हड्डी, कोई हड्डी का डॉक्टर कौन इसे बाहर निकाल सकता है। तो एक जो श्रृगाल था उस श्रीगाल ने सुझाव दिया कि एक व्यक्ति है जो ये हड्डी को बाहर निकालेगा और वो है बगुला, क्योंकि बगुले की जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है और पतली होती है, और कोई प्राणी नहीं इस पूरे जंगल में जो ये कार्य सिद्ध कर सकेगा। ये जो बगुला है इसकी चोंच लंबी है पतली है, तो ये जब मुंह में डालेगा और ये हड्डी को बाहर निकाल सकता है। परंतु बगुला शेर के सिंह के मुंह में अपना चोंच क्यों डालेगा, उसको मनाएगा कौन? तो श्रीगाल ने कहा वो आपका बिजनेस, वो आप देखो। तो अब शेर ने सोचा भाई बगुले से मित्रता करनी पड़ेगी, तो बगुले के समुदाय में गया ये शेर सिंह, और कैसे तो इस सिंह ने एक बगुले को थोड़ा ये दर्शाया कि मैं किसी को खाने नहीं आया हूं, बहुत व्याकुल अवस्था है मेरी, तो कोई एक मेरी सहायता कीजिए। तो एक बगुले को बातचीत करने के लिए रुकाया और उस बगुले को समझाया कि देखो ऐसे ऐसे यहां पर हड्डी अटकी है, तो ये थोड़ा निकालो बाहर अपनी चोंच से। मेरी चोंच मुंह के अंदर, मैं यहां पर खड़ा हूं, यही मेरा साहस है इतना, और मेरी चोंच तुम्हारे मुंह के अंदर मैं डालूं? क्या भरोसा, हड्डी है कि नहीं पता नहीं कि कोई और प्रयोजन है? तो सिंह ने कहा नहीं नहीं देखो मैं जो भी कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, सत्य के अलावा और कुछ नहीं कह रहा हूं। हड्डी के ऊपर हाथ रखकर कहता हूं। तो कैसे तो उसने फिर बगुले को कहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा, ये अगर कार्य कर लोगे तो एक बहुत ही विशेष भेंट तुम्हें मैं दूंगा। तो बगुले ने कहा शेर और सिंह क्या भेंट दे सकता है? तो बगुला कहा ठीक है, थोड़ा परोपकार करना चाहिए, राजा है हमारे जंगल का राजा है तो थोड़ी सेवा करनी चाहिए, आगे चलकर हो सकता है राजा काम आए। तो बगुला याद रखना भेंट, वादा किया है भेंट देने वाले हो। तो बगुले ने अपनी चोंच अंदर डाली और तुरंत हड्डी को बाहर निकाल लिया, और बगुला खड़ा है और सिंह भी खड़ा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बगुले ने कहा भेंट, तो सिंह कहता है भेंट, भेंट तो दे दी ना, भेंट मिली नहीं क्या? बोला कौन सी भेंट, क्या हड्डी की कौन सी भेंट? तो सिंह कहता है कि अरे इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है तुम्हारा बगुले, कि तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाली और मैंने तुम्हें अनुमति दी वो करने के लिए, ये सबसे बड़ी भेंट है। बस इस भेंट को ले लो, अपने सौभाग्य को इस प्रकार से मनन करते रहो, जाओ तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं, ये सबसे बड़ी भेंट है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उसी प्रकार से ये जो बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली लोग होते हैं ये वो सिंह के समान हैं। ये वो कहेंगे कि हाँ हम आएंगे वो आपके कार्यक्रम में या मीटिंग अरेंज कीजिए, ये सब वो सिंह के समान है, उनकी भेंट जो है वो सिंह के समान है, कि हमने हमारा दर्शन दे दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरे आप लोगों को हमारा दर्शन मिल रहा है, दर्शन पवित्र कोरे, ये अमर गुण, यदि हमारा दर्शन आप लोग ले रहे हैं इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे कोई ऐसे ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है अपनी कृष्ण भावना अमृत बढ़ाने के लिए। एक और समय एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रॉकेट साइंटिस्ट, बहुत वो विख्यात रॉकेट साइंटिस्ट था, और उसने एक वैज्ञानिकों की मीटिंग में उसने कहा कि साइंस जब तक विज्ञान जब तक भगवान को नहीं स्थापित करता तब तक विज्ञान कहीं पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो भक्तों ने, ये पेपरों में आया, भक्तों ने जब ये सब पढ़ा तो भक्तों भक्त सब प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी ये इतना विश्व विख्यात साइंटिस्ट है ये, और इस साइंटिस्ट ने ये वाक्य कहा है, तो अवश्य ही यदि आप उसे कुछ थोड़ा प्रचार करेंगे तो ये इतना विख्यात है तो हम भी, हमको भी कुछ विख्याति मिलेगी, ख्याति मिलेगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसे प्रचार करूंगा इसलिए नहीं कि ये बहुत विख्यात साइंटिस्ट है, मैं इसे प्रचार करूंगा क्योंकि ये जान गया है कि भगवान का महत्व क्या है, मैं इसे प्रचार करूंगा क्योंकि ये एक बद्ध जीवात्मा है, ये विख्यात है इसलिए मैं प्रचार नहीं करूंगा इसे। तो यहां पर देखिए, एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता कहां पर है, बाहरी रूप से कि आंतरिक रूप से। और इसीलिए यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वासुदेव ब्राह्मण के विषय में कह रहे हैं कि बाहर से सर्वांगे गलित कुष्ठ ताटे कीड़ामय, कि पूरा अंग जो है गल रहा था, पस से भरा हुआ था और कीड़ों से भरा हुआ था, परंतु फिर भी महाशय, वो महाशय थे। यहां पर जो भक्ति का एक लक्षण है, भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया है। सुदुर्लभ का अर्थ है दुर्लभ, आप जानते हैं, जो कि बहुत रेयर कोई वस्तु होती है, दुर्लभ। परंतु भक्ति को रूप गोस्वामी भक्ति रसामर सिंधु में कहते हैं कि भक्ति केवल दुर्लभा नहीं बल्कि सुदुर्लभा है। और वो सुदुर्लभा इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण बाहरी रूप से अपने भक्तों को इस स्थिति में रखते हैं, जैसे वासुदेव को रखा है, अपने भक्तों को इस स्थिति में रखते हैं, सर्वांगे गलित कीड़ामय, बाहरी रूप से ऐसे रखते हैं। तो कोई जो भक्ति को सोचता है कि भक्ति कोई भी कर सकता है, जब वो देखेगा तो कहेगा नहीं, मुझे भक्ति नहीं करनी यदि ऐसा मेरी स्थिति हो जाएगी तो। तो भगवान भक्ति को केवल उन्हीं के लिए रिजर्व रखते हैं जो योग्य है, और भगवान सबको भक्ति नहीं देते, सुदुर्लभ कहा गया है। एक और कारण है, भगवान सबको भक्ति इसलिए नहीं देते क्योंकि जिसको भगवान भक्ति दे दी, भगवान को स्वयं को देना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो इसीलिए जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, जो केवल स्वर्ग प्राप्ति ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य में अनुरक्त हैं, वो जब देखते हैं कि ये जो भक्ति करने वाले होते हैं इनके अंदर इतनी तकलीफें आती हैं, तो क्यों कोई भक्ति करे। इसीलिए जो भौतिकतावाद, जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, वो जब देखते हैं कि भगवान के भक्त परेशानी में जब होते हैं तो वो लांछन लगाते हैं भक्ति योग के ऊपर और भगवान के ऊपर। जैसे पिछले हफ्ते मैं जब यहां पर था तो ये जगन्नाथपुरी के भक्त के विषय में मैं कह रहा था कि ये जगन्नाथपुरी में एक बहुत अनन्य भक्त हुए जगन्नाथ जी के, और अपनी एक प्रार्थना में, अपने एक भजन में वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे जगन्नाथ जी, मैं इतनी पीड़ा में हूं, तकलीफ में हूं, कठिनाई में हूं, आप कृपया मेरी कठिनाइयों को दूर कीजिए। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है, भाई ये भगवान के अनन्य भक्त हैं कि केवल अन्य भक्त हैं, कि अपनी कठिनाई दूर करने के लिए भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो अपने प्रार्थना में लिखते हैं कि आप मेरी कठिनाई दूर कीजिए मेरे वास्ते नहीं, आपके वास्ते। तो कोई पूछ सकता है प्रश्न, भाई भगवान किसी की कठिनाई दूर करेंगे तो जिस व्यक्ति को कठिनाई हुई है उसके वास्ते? वो कहते नहीं, आपके वास्ते, क्योंकि मुझे ये कठिनाइयों से इनका कोई रंज नहीं है। आपका नाम है भक्त वत्सल, आपका नाम है दीनानाथ, और सभी लोग आपको जानते हैं कि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, तो यदि आप नहीं करोगे तो आपका नाम खराब होगा। तो यदि आपको आपका नाम बचाए रखना है तो मेरी कठिनाई दूर करिए। तो कई लोग जब देखते हैं कि भक्त किसी तकलीफ में होते हैं तो पूछते हैं, कहा था कभी मत करना भगवान, ये कृष्ण की भक्ति, क्योंकि इनका नाम है हरि, और इन्होंने स्वयं कह दिया हरिष्ये तद धनम शनई, कि सबसे पहली कृपा मेरी कौन सी होती है मेरे भक्त के ऊपर, जब मैं उसका सब कुछ हर लेता हूं। हरे कृष्ण। राधानाथ महाराज एक बार बता रहे थे कि बहुत वर्ष पहले वो एक आश्रम में गए जहां पर शिवजी की आराधना उस आश्रम में सभी किया करते थे। तो जो उस आश्रम मठ के मठाधीश थे, उन्होंने देखा कि सब कुछ उस आश्रम में, उसका मैनेजमेंट, साफ सफाई, सब कुछ एकदम पक्का, कोई त्रुटि कहां पर भी नहीं थी, कोई तकलीफ कोई प्रकार की सरकार की तकलीफ या मैनेजमेंट की तकलीफ कुछ नहीं थी। तो उन्होंने मठाधीश को पूछा कि कैसे हम देखते हैं कि जब हम हमारी संस्था को चलाने के लिए कुछ प्रयास करते तो कितनी तकलीफें आती हैं, यहां पर हम देखते हैं कि कोई तकलीफ नहीं। तो वो कहे, क्योंकि आप कृष्ण के भजन कर रहे हो। वो मठाधीश ने कहा, जो कृष्ण का भजन करता है भगवान सबसे पहले उसे परखते हैं तकलीफें दे देकर परखते हैं, और क्योंकि हम शिवजी की आराधना कर रहे हैं तो हमको जो भी चाहिए शिवजी देते हैं। तो वो गुणगान कर रहा था व्याज स्तुति, हमने कही तो व्याज स्तुति से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आपके जो हैं, आप जो मांगोगे वो देंगे नहीं आपको, जो आवश्यक है वो देंगे आपको, पिता के समान है। तो देखिए, यदि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के जीवन में देखें, पांडवों के जीवन में देखिए, पांडवों के जीवन में बचपन से लेके अंत तक यदि उनकी ऑटोबायोग्राफी कोई पढ़ेगा, और यदि उसे समझ में नहीं आएगा कि भक्ति योग क्या है, तो कभी भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करेगा। कि बचपन से लेके अंत तक इतनी तकलीफें इन पांडवों को मिली, और ऐसा नहीं था कि वो भक्ति में कच्चे थे, ऐसा नहीं था कि जो पांडव जो थे वो नौसिखिया थे भक्ति में, साक्षात भगवान उनके साथ मध्य में रहते थे। तो ये भीष्म देव प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि साक्षात भगवान आपके मध्य में थे फिर भी इतनी तकलीफें आपको भुगतनी पड़ी। और वो जो भीष्म इनको कह रहे थे, वो स्वयं कब कह रहे थे, जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं रणभूमि में, और वो स्वयं भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भीष्म पितामह जो एक महाजन है 12 महाजनों में से, अंत समय में देखिए उनके लिए कौन सी शैया तैयार की गई, बाणों की शैया। और भीष्म पितामह महाभारत में वर्णन है कि भीष्म पितामह को वो सारे बाण किसने मारे, अर्जुन, जो कि गॉड ब्रदर, जो कि स्वयं कृष्ण के भक्त, और वही दूसरे कृष्ण के भक्त को, और इतने बाण मारे भीष्म पितामह को अर्जुन ने कि एक उंगली भी दो बाणों के बीच में से कोई नहीं डाल सकता था, इतने बाण मारे थे। और उन बाणों के ऊपर भीष्म पितामह अपने अंत समय लेटे हुए, कोई इच्छा करेगा बाणों की शैया पर एक बार थोड़ा उस पर लेट कर देखते हैं कैसा लगता है, और वो भी भीष्म पितामह जैसे इतने बड़े योद्धा महाजन और रणभूमि में। तो देखिए तो कहा गया है कि जब भीष्म पितामह जब लेटे हुए तो दुर्योधन तकिया लेकर आता है कि थोड़ा यहां पर तो कुछ मैं लगाऊं, तो भीष्म पितामह भेजते भागो यहां से, तुम्हें तुम्हें कोई अकल नहीं कि क्या सेवा कब कैसे करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह पांडव द्रौपदी द्रौपदी का वस्त्र हरण, ये सारे उदाहरण भौतिकतावादी लोग लेते हैं। प्रहलाद महाराज क्या क्या तकलीफें नहीं उनको भुगतनी पड़ी, और वो क्या गलती थी उनकी, केवल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर रहे थे, यही गलती थी। यही गलती थी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कर रहे थे और अपने पिता को कर रहे थे, और वो भी बहुत नम्रता से। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बहुत ही अपमानजनक शब्दों से प्रचार कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा सुसंस्कृत भाषा में वो कह रहे थे कि यह आपके लिए भला होगा कि आप वृंदावन में जाके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। अब हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आई वो अलग बात है, ये बातें। तो प्रहलाद महाराज की क्या गलती थी, इतनी तकलीफें, आग के अंदर विष पिलाया गया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से नीचे फेंका गया, और हाथी उनके ऊपर चलाए गए, सर्प के गड्ढे में फेंका गया उनको, ये सारी तकलीफें। और वो थे केवल 5 वर्ष के, केवल 5 वर्ष के थे प्रहलाद महाराज। 5 वर्ष का जब कोई होता है, कोई गुनाह भी करता है तो माफी मिल जाती है उस व्यक्ति को, परंतु यहां पर 5 वर्ष का व्यक्ति, 5 वर्ष का बालक भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रचार कर रहा है उसका, और ये सब सजा। और चैतन्य महाप्रभु के एक और अनन्य पार्षद हुए श्रीधर कोलवेज, वो इतने गरीब थे श्रीधर कोलवेज, उनका नाम भी कोलावेज, जो केला जो होता है, केले के पत्ते और केले के फूल, बस इनका ही उनका व्यापार था, यही वो बेचा करते थे, और कुछ बहुत ज्यादा, कुछ बहुत रकम में नहीं बेचा करते थे वो, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता बस वही, उसी में उनका जीवन यापन, उसमें से भी 50% तो वो गंगा की सेवा में लगाते थे। तो श्रीधर कोलावेज पूरी रात भर भगवान कृष्ण का नाम लिया करते थे, और उनके पड़ोसी जो सब देवताओं के भक्त थे, दुर्गा इत्यादि काली के, तो वो श्रीधर कोलावेज को चिल्लाते हुए कहते कि देखो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए रात भर ये कृष्ण का नाम चिल्लाते रहते हो भूख के कारण, और वो कुछ फेंकते थे, ये खाओ और चुप करके सो। श्रीधर कोलावेज के जो कपड़े थे, जो ओरिजिनल कपड़ा था किसी को पता नहीं, उसमें इतने सारे पैचेस लगाए हुए थे सील सील के, और जो छत थी उनके झोपड़ी की वो हर समय पानी से चूती रहती थी। तो ये श्रीधर कोलावेज इतनी गर्मी में, निर्धनता में, तो जो पड़ोसी थे वो कहते थे कि क्योंकि तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो इसलिए इस स्थिति में हो, इसलिए हमने तुमको कहा था कि दुर्गा का नाम लो और वो सब कुछ देंगे तुम्हें, क्या क्या चाहिए तुम्हें। तो इस प्रकार से वासुदेव ब्राह्मण को कोई बाहरी रूप से देखता तो वो यही कहता कि ये कृष्ण का भक्त है इसलिए इतनी पीड़ा में है। परंतु एक सुंदर श्लोक में कहा गया है कि जब भक्त किसी विपत्ति में होते हैं तो वो विपत्ति वास्तविक रूप में वो भक्त किस प्रकार से देखता है। महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। महाविपत्तौ संसारे, किसी भक्त के जीवन में केवल विपत्ति नहीं बल्कि महाविपत्ति जब आती है, यह स्मरेत मधुसूदन, तो वो भक्त मधुसूदन का स्मरण करता है जब कभी भी विपत्ति आती है तो। और जब मधुसूदन का स्मरण करता है तो वो विपत्ति क्या हो जाती है, विपत्ति तस्य संपत्ति, वो विपत्ति जो है संपत्ति में परिणित हो जाती है। जैसे वृंदावन में एक बाबा जी हुए जो रोज अपने राधा कृष्ण अर्च विग्रह के लिए वो पोशाक सिया करते थे, रोज सिया करते थे, तो वो बहुत विख्यात थे और बहुत से लोग आकर दान करते थे कपड़े उनके अर्च विग्रह के लिए। तो उनका दिन भर केवल रोज भगवान के लिए नई पोशाक सीना, ये उनकी नित्य सेवा थी भगवान के लिए। तो एक व्यापारी आए वहां पर और उन्होंने सुना कि ऐसे ऐसे ये बाबा जी हैं वृंदावन के जो रोज पोशाक सीते हैं और बहुत सुंदर पोशाकें सीते हैं ये भगवान के लिए। तो इन्होंने आकर देखा, मिलना चाहते थे वो, तो आकर जब इन्होंने इन बाबा जी को देखा तो देखा बाबा जी के जो कपड़े थे, बाबा जी की जो पोशाक थी वो पूरी फटी हुई, चिथड़े उड़े हुए थे सब जगह पर, छेद बड़े बड़े और एकदम पुरानी, गल रहा था कपड़ा। तो ये व्यापारी ने पूछा कि ये कौन से भगवान की आप आराधना करते हो कि जिनके लिए आप रोज नई पोशाक सीते हो, क्या वो आपको एक नई पोशाक नहीं दे सकते पहनने के लिए? ये कैसे निष्ठुर भगवान है जिनकी आराधना आप करते हो कि स्वयं ले रहे हैं रोज नई नई पोशाकें, और क्या जरूरत है उनको पोशाकों की इतनी, वो तो भगवान है, परंतु खुद के भक्त के लिए एक ठीक पोशाक भी नहीं। तो ये बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया इस व्यापारी को। ये बाबा जी ने कहा कि देखो, मैं रोज अपने भगवान के लिए एक नई पोशाक सीता हूं, और किसी कपड़े को सीने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है? सुई और धागा, सुई और धागे की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि देखो, सुई क्या काम करती है सीने सीने में, सुई क्या काम करती है, पहले वो छेद करती है, पहले वो पोशाक में जो भी कपड़ा है उसमें वो सुई छेद करती है। छेद करने का अर्थ है फाड़ती है। जब हम सीते हैं तो सुई जब पहले जाती है तो कपड़े को फाड़ती है वो, परंतु जब वो कपड़े को फाड़ती है तो अपने पीछे पीछे धागा लेकर आती है। तो पहले कपड़े को फाड़ा और पीछे से जो धागा आया उससे सी दिया। तो बाहरी दृष्टिकोण से लगेगा कि जो सुई है ये उल्टा कर रही है जो हम चाहते हैं उस कपड़े में आना। हम चाहते हैं कि कपड़ा जुड़े, सीने का अर्थ क्या है कि कपड़ों को हम जोड़ते हैं और एक पोशाक बनाते हैं, परंतु यहां पर ये सुई तो पहले फाड़ रही है, परंतु यदि वो सुई फाड़े नहीं तो धागा कैसे जाएगा? तो ये बाबा जी ने कहा इस व्यापारी को कि जब तक वो सुई फाड़ती नहीं उस कपड़े को, तब तक धागा नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार से ये जो तकलीफ देख रहे हो मेरे ऊपर, मेरी जो पोशाक फटी हुई है, गली हुई है, ये उस सुई के समान है। किसी भी भक्त के जीवन में जो तकलीफ होती है वो सुई के समान होती है, परंतु भगवान भक्त के जीवन में सुई देते हैं, परंतु उस सुई के पीछे पीछे धागा भी रहता है उनके कृपा का, और वो केवल भक्त को ही दिखता है, वो तुम जैसों को नहीं दिखता। तुम जैसों को केवल सुई दिखती है। इसीलिए मेरी पोशाक फटी होगी, परंतु भगवान स्वयं मेरा हृदय सिए हुए हैं, और बाहरी रूप से तुम देखोगे लोगों की पोशाक अच्छी से सुई सी हुई है और नई होगी, परंतु उनके हृदय में झांक कर देखो तो हृदय फटा हुआ है, गला हुआ है, सड़ा हुआ है। तो वैसे ही यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वासुदेव, ये जो ब्राह्मण था, वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय। वो महाशय इसलिए हैं क्योंकि उनका जो हृदय था वो कृष्ण प्रेम से लबालब था, परंतु उनका जो शरीर था वो किससे लबालब था? कीड़ों से, घावों से, पस से, कुष्ठ रोग से। तो इसीलिए भक्ति जो है वो सुदुर्लभा है, केवल उन्हीं को मिलती है जो इसका मूल्य दे सकते हैं, जो इसका प्राइस दे सकते हैं, भगवान उन्हीं को भक्ति देते हैं अपनी। और यहां पर देखिए, ये तो सबसे पहला श्लोक जिसमें वासुदेव का गुणगान इस प्रकार से किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इतना ही नहीं, वासुदेव वो क्या किया करते थे अपने इस कुष्ठ रोग के लिए, उसके विषय में वो अब कह रहे हैं। अंग हैते यही कीड़ा खासी या पड़ाय, उत्थान से ही कीड़ा रखे से ही थान। ऐसा नहीं था कि वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर दवाइयां लगा रहे थे अपने घावों के ऊपर, और किसी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले रहे थे, या लोगों के पास जाकर कुछ भिक्षा मांग रहे थे कि अरे कोई पैसे दो। जैसे कई बार हम ट्रेनों में जाते हैं तो एक महिला को मैं देखता हूं, वो कुछ बांटती रहती कार्ड, मैं एक विधवा हूं और मेरी एक युवती है, उसकी शादी करानी है, तो कृपया आप 2 रुपये दीजिए, यदि 2 रुपये नहीं देते तो ये कार्ड वापस दीजिए। तो ऐसा नहीं था कि वासुदेव सबके पास जाकर वो मांग रहा था कुछ कि ना मेरे कुष्ठ रोग के लिए कुछ कीजिए, कुछ पैसे दीजिए, कोई डॉक्टर को बुलाइए। यहां पर कहते हैं वो क्या कर रहे थे। अंग हैते यह कीड़ा खांसिया पड़े, कई बार ये जो कीड़े इतने सारे घावों में थे वासुदेव के शरीर में, वो गिर जाते थे नीचे, इतने सारे कीड़े थे कि वो गिर जाते थे नीचे कई कीड़े, और वासुदेव क्या क्या करते थे, उत्थान से ही कीड़ा राखे से ही थान, उन कीड़ों को उठाकर वापस अपने घावों पर रखते थे। वो जिस घाव से वो कीड़ा नीचे गिरा उस घाव के ऊपर वापस उस कीड़े को रखते थे। कोई व्यक्ति पागल कहेगा, देखिए क्या भावना है ये वासुदेव ब्राह्मण की। लोग तो प्रयास करेंगे कि शरीर के सारे कीड़े, ये एंटीबायोटिक क्या होता है डॉक्टर साहब, ये एंटीबायोटिक क्या होता है, सारे जो अलग अलग कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको मारने के लिए। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उसमें बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुद्धि लगा रहे हैं। कई ऐसे एंटीबायोटिक हैं कीड़ों को मारने के जो 1-1 लाख रुपए के हैं, और फिर भी नहीं मार पा रहे वो इन कीड़ों को। देखिए तो भगवान ने कीड़ों को देखिए कितनी शक्ति दे दी। परंतु यहां पर वासुदेव ब्राह्मण कोई एंटीबायोटिक नहीं बल्कि कीड़ों को उठाकर और रख रहे हैं। और वो क्यों रख रहे थे, उनकी धारणा क्या थी, कारण क्या था? वो इसलिए रख रहे थे कि उन्होंने सोचा कि मेरा शरीर जो है किसी काम का नहीं, मैं इस शरीर से किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकता। यदि ये कीड़े प्रसन्न हो रहे हैं मेरे घावों के वजह से, मेरे कुष्ठ रोग के वजह से, तो मैं कम से कम इन कीड़ों को तो प्रसन्न करूं। ये उनकी चेतना देखी कि कीड़ों को प्रसन्न करने के लिए उठा उठा कर फिर से अपने घावों पर उन्हें रख रहे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि एक जो भक्त की धारणा होती है, एक भक्त जो करता है और एक भौतिकतावादी व्यक्ति, दोनों विपरीत होते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण कृष्ण देते हैं गीता में कि जब भक्त जागता है तो भौतिकतावादी मनुष्य सोता है, और जब वो जागा रहता है तब भक्त निश्चिंत आराम करता है। तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्वभूतानाम। और यह हमने वास्तविक रूप में देखा है। मुंबई में हमारा जो राधा गोपीनाथ का मंदिर है, सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है, और अगल बगल में बहुत से पड़ोसी जो हैं, जो भक्त नहीं है वो रहते हैं। तो हम तैयार होकर अब मंगल आरती के लिए जा रहे हैं और वहां पर अब उनका टीवी बंद हुआ है और वो सोने जा रहे हैं। तो रात भर टीवी देखा, और जैसे ही मंदिर का शंख बजा तो वो टीवी बंद हुआ और अब वो सोने गए। या निशा सर्वभूतानाम, वास्तविक रूप में भूतानाम, भूत प्रेत का जीवन है। जैसे मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया था, बहुत वर्षों पश्चात, 17 वर्ष के पश्चात वो मुझसे मिला। कहीं से तो उसे मेरा मोबाइल नंबर मिला, तो उसने फोन किया और फोन पे कहता है, पहचान है मेरी आवाज? तो मैंने कहा, भाई मैं कोई परमात्मा नहीं, कौन है भाई? तो उसने कहा, मैं कुलदीप पारिक, मैं बचपन का तेरा यार। मैंने कहा, अरे मुझे याद आया, 17 वर्ष पहले हम लोग एक साथ थे स्कूल। तो फिर मुझे पूछता है कि मैं बंबई में हूं, कहां पर, कहां मिलने आऊं मैं, एड्रेस कहां है? तो मैंने कहा, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। वो कहा, मंदिर के बगल में रहते हो? मैंने कहा, मंदिर के अंदर रहता। तब मंदिर में सबसे पहला प्रश्न, शादी नहीं की? तो सोचिए आगे चलकर क्या धक्का लगने वाला था उसको। तो मैंने कहा, नहीं, इस एड्रेस पर आ जाओ, सब पता लग जाएगा तुम्हें। तो जब वो आया और मंदिर में देखा, मेरे जैसे कितने सारे घूम रहे हैं, तो पहले तो उनको देखकर थोड़ा उसे, और सब युवावस्था, अपनी युवावस्था में, तो फिर उनमें से जाना पहचाना सा चेहरा मेरा बाहर आया। तो उसने कहा, पहले तो वो उसने कहा कि मैं बेहोश होने वाला था ये सब देखकर, ये कब, कैसे, क्यों, कहां, एक साथ सारे प्रश्न आ गए उसके। तो मैंने कहा कि कौन से प्रश्न का उत्तर शुरू करूं मैं, कब, क्यों, कैसे, कहां हुआ ये सब। तो वो मुझे पूछता है कि तुमने ये, तुम्हारे इतने अच्छा हेयर स्टाइल था यार तुम्हारा। तो वो कहता है, इतना अच्छा तुम्हारा हेयर स्टाइल था, क्या ये सब सरमंडवा लिया ये सब। तो वो मुझे पूछता है, तुम्हें बाहर जाने में शर्म नहीं आती ऐसे सब बिना बाल? जैसे कई बार लोग किसी कारणवश जब सर मुंडवाना पड़ता है तो टोपी पहनकर फिर उसे कैसे तो ढककर पता न लग जाए, विग पहन लेते हैं कई बार, पता न लग जाए कि क्या हुआ है। जैसे हमारे एक भक्त वो प्रचार के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ, सिग्नल जैसी लगा तो रोड क्रॉस कर रहे थे और उनके पीछे एक और व्यक्ति जिसका भी सर उसने नहीं मुंडवाया था, प्रकृति ने मुंडवा दिया था, तो पीछे पीछे वो भी आ रहा था। तो क्या हुआ कि एक गाड़ी को इन दोनों के वजह से रुकनी पड़ी, तो गाड़ी वाला चिल्लाया और गाड़ी वाला चिल्लाते हुए कहा, ए टकले। तो ये जो भक्त थे ब्रह्मचारी, तो क्योंकि इन्होंने स्वयं वॉलंटरली निकाला था अपने बाल, तो बहुत बार सुना है ये सब कहते हैं लोग, तो इन्होंने क्षमा मांगकर ये आगे चले गए। परंतु पीछे वाला वो भी बिना बाल के ही था, उसे इतना क्रोध हुआ उसने, और वो कहता है, तू टकला, तेरा बाप टकला, तेरा खानदान टकला। तो और अब बाहर निकल के दोनों की हाथापाई चालू हुई। ये सोच रहा था इसके बाल नोचू, लेकिन बाल नहीं थे। तो ये ब्रह्मचारी बता रहे थे, इन्होंने जब ये सब कुछ देखा तो कह रहे थे कि देखो अंतर क्या है, मैंने स्वेच्छा से अपने बाल दे दिए, इसलिए यदि जब कोई टकला भी कहता है तो मुझे कुछ लगता नहीं, परंतु प्रकृति ने जब एक एक बाल छीन लिए, उखाड़ लिए इस व्यक्ति के, तो जब कोई व्यक्ति इसको टकला कह रहा है तो देखो कितना बुरा लग रहा है अब इसे। तो ये मेरे मित्र ने मुझसे जब पूछा, तुम्हें ऐसे शर्म नहीं है, डर नहीं लगता बाहर ऐसे सब ये धोती कुर्ता और सर मुंडवाया हुआ? तो मैंने कहा, मैं जब बाहर जाता हूं ना तो जाने से पहले करके जाता हूं, ऐसा नहीं कि जाने से पहले थोड़ा उगा कर जाएं कि लोग क्या कहेंगे। मतलब हम जब बाहर किसी कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में जाते हैं, तो पहले जब मैं किसी विशेष कार्यक्रम में जाता तो वो बालों को सवार कर जाता था, लेकिन अब किसी विशेष कार्यक्रम में हम जाते हैं तो उसको उखाड़ कर जाते हैं। ये अंतर, या निशा सर्वभूताना। तो उसे विश्वास नहीं हो कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे जी सकता है, बिना बालों के कैसे जी सकता है। तो मैंने कहा, बहुत लाइट लगता है। तो यहां पर देखिए कि जो वासुदेव ब्राह्मण कर रहे थे बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा एक भौतिकतावादी व्यक्ति करता। जैसे एक विदेशी भक्त बता रहे थे कि वो लोग, कुछ भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक पाश्चात्य देश में, और उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैन थी उन्होंने खड़ी की और फिर वो अपना पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो आकर जब देखा तो वैन गायब, किसी ने चोरी कर ली, वैन चोरी कर ली। तो उनमें से एक भक्त ने कहा, चिंता मत करो, 5 मिनट में आ जाएगी। तो उनको लगा, भाई तुम्हें कैसे पता और तुम 5 मिनट में कैसे ले आओगे? तो ये भक्त गए 2-3 गली घूमकर और 5 मिनट में वैन फिर से ले आए। तो उन्होंने पूछा, चोरी की है, किसने चोरी की? तो ये भक्त ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये जिसने चोरी की है ना, ये जो पूरा गैंग, मैं इसका मेंबर था। ये गैंग का मैं मेंबर था और मुझे मालूम है ये कैसे चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद क्या करते हैं। परंतु अब क्योंकि मैं वो सब किया करता था इसे मुझे मालूम है, इसलिए मैं ले आया फिर से। तो भक्त बता रहे थे कि देखो भगवान कृष्ण की कृपा से, माखन चोर की कृपा से, जो कार चोर हैं वो अब भगवान के जो वाहन हैं उनको बचा बचा कर रखे हैं। प्रभुपाद जी वो कहते थे कि देखो ये सारे पाश्चात्य भक्त, विदेशी भक्त, ये एक समय गाय की हत्या कर कर खाते थे और यही भक्त अब गो रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं गायों की रक्षा कर रहे हैं। मृगरारी, मृगरारी जो जानवरों को अधमरा कर कर छोड़ दिया करता था, वही मृगरारी नारद मुनि की कृपा से अब एक चींटी को भी वो कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत का बदलाव। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में कि एक जो सत्व गुण में व्यक्ति रहता है और एक जो रजोगुण में व्यक्ति रहता है, दोनों के सुख में अंतर क्या है। तो भगवान कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगात यत्तत अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं कि जो राजसी व्यक्ति है, राजसिक व्यक्ति है, रजोगुण में है, उसका इंद्रिय भोग कैसा है कि शुरुआत में वो इंद्रिय भोग जो है अमृत, अमृत के समान लगता है, परंतु परिणाम विषम ईव, परंतु उसका परिणाम क्या होता है, विष के समान। और इससे विपरीत है सत्वगुण। सत्वगुण में जब व्यक्ति किसी सुख की प्राप्ति करने जाता है तो शुरुआत में वो विष के समान प्रतीत होता है। ये सब भक्ति करना, चार नियम करना, माला करना, प्रवचन में बैठना और भक्तों के साथ दंडवत करना, ये सब कुछ करना हो सकता है कि पहले विष के समान लगे, कड़वा लगे, सुबह सुबह उठकर ये सब करना, परंतु परिणामे अमृत उपमम, इसका परिणाम क्या है, अमृत के समान है वो। तो यहां पर जो लोग देखते थे वासुदेव ब्राह्मण को ये सब करते हुए कि कीड़ों को उठाकर फिर से रख रहा है, इससे बड़ा पागल व्यक्ति और कोई नहीं, ये आत्महत्या कर रहा है। ये पता नहीं आत्महत्या शब्द कहां से आया, आत्मा की तो कभी हत्या हो नहीं सकती, शरीर हत्या होना चाहिए। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दो गुण दिखा रहे हैं वासुदेव का, कि सबसे पहला गुण तो बाहरी उनका शरीर हालांकि कुष्ठ रोग से पीड़ित था, परंतु आंतरिक उनका जो हृदय था भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से लबालब था, और बाहरी शरीर को भी वो कीड़ों के लिए ही रखे थे, अपने लिए नहीं। देखिए इतनी निस्वार्थ भावना किसी व्यक्ति कि अपना पूरा शरीर कीड़ों के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब वासुदेव ब्राह्मण ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र में आए हैं, तो तुरंत कूर्म ब्राह्मण के घर गए वासुदेव ब्राह्मण, परंतु वहां पर समाचार मिला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े हैं, तो वो इतने ज्यादा दुखी हुए, सबसे ज्यादा दुख अब उनको हुआ, वो कुष्ठ रोग का कोई दुख नहीं था उनको अब तक, दुख क्या था कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मैं नहीं कर पाया, यहां पर थे वो और मैं दर्शन नहीं कर पाया, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं, इससे बड़ी पीड़ा और कोई नहीं। और केवल वासुदेव इस प्रकार से विलाप कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जहां कहीं पर भी आगे चले गए थे वापस आ गए, वापस आ गए भगवान केवल वासुदेव का उद्धार करने के लिए, केवल अपना दर्शन कृपा वासुदेव ब्राह्मण को देने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु वापस आए और चैतन्य महाप्रभु आकर सीधे वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन किया। यहां पर लिखा गया है, प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरे गेला, आनंद सहित अंग सुंदर हैला। जैसे ही अब लोग जब देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु को वासुदेव को आलिंगन करते हुए, और वासुदेव को भी ऐसा लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है गौरांग वर्ण, इतना सुंदर उनका शरीर, वो शरीर वो मेरे निकट भी ला रहे हैं, तो वासुदेव दूर भाग रहे थे कि जो मेरी परछाई के निकट भी नहीं आता, ये चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ये मेरे निकट आ रहे हैं। और केवल निकट ही नहीं आ रहे, ये मेरे पस से भरे हुए शरीर का आलिंगन कर रहे हैं। ये देखिए, ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो इस भौतिक संसार में आते हैं किसी व्यक्ति के पस से भरे हुए शरीर का आलिंगन करने के लिए। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की। इसलिए उनको कहा गया है नमो महावदन्याय अवतार, क्योंकि वो पस से भरा हुआ शरीर नहीं देख रहे थे, वो वासुदेव का हृदय देख रहे थे। परंतु क्योंकि भगवान के संपर्क में जो कोई आता है उसका उद्धार तो निश्चित है, तो इसलिए यहां पर कहा गया है आनंद सहित अंग सुंदर हैला। वासुदेव ब्राह्मण का पूरा शरीर अब सुंदर हो गया, सारे घाव चले गए, पस चला गया, कीड़े चले गए, कुष्ठ रोग चला गया, और पूरा शरीर इतना सुंदर बन गया वासुदेव का। परंतु जैसे ही वासुदेव ने अपने आप को देखा, और सभी वहां कुर्म क्षेत्र के रहने वाले गांव वाले उन्होंने जब देखा तो वो गुणगान करने लगे, वो गुणगान करने लगे वासुदेव का कि अरे इतनी बड़ी कृपा आज तक हमने नहीं देखी किसी के ऊपर होती हुई। तो वासुदेव ब्राह्मण वो सुदामा ब्राह्मण का एक श्लोक गा रहे हैं और वो कहते हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुर इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा ब्राह्मण ने यही श्लोक भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गाया था, क्वाहम दरिद्र पापियां, कि हे भगवान मुझसे अधिक दरिद्र और पापी और कोई व्यक्ति नहीं है। क्व कृष्ण श्री निकेतन, और आप जिनको श्री निकेतन कहा गया है, श्री के जो निकेतन हैं, श्री लक्ष्मी देवी जो आपके वक्षास्थल पर रहती हैं, आप मुझ जैसे ब्रह्म बंधु, अपने आप को ब्राह्मण भी नहीं कह रहे थे वो, मुझ जैसे ब्रह्म बंधु को आपने स्मरण में रखा, और इतना ही नहीं आकर आपने परिरंभित बाहुभ्याम अपने बाहुओं से आपने मेरा आलिंगन किया, इससे बड़ी कृपा मैं नहीं समझ सकता कि भगवान की हो सकती है। तो यहां पर देखिए बहुत ही सुंदर वासुदेव की प्रतिक्रिया। अब शरीर इतना सुंदर बन गया है, ऐसा नहीं कि वासुदेव ने सबसे पहले जाकर आईने में अपने शरीर को देखा कि देखते हैं अब मैं असली वासुदेव कैसा दिखता हूं। लोग गुणगान कर रहे हैं, भगवान की कृपा मिल गई, सारा रोग चला गया, सभी को पता लगा कि क्यों भगवान ने कृपा दी, क्योंकि ये भक्त है, शुद्ध भक्त है। परंतु वासुदेव की प्रतिक्रिया क्या है, वो और दुखी हो गए। वासुदेव और दुखी हो गए और वासुदेव सोचने लगे, किंतु आछिलान भाल अधम हना एबे अहंकार मोर जन्मी वे आसिया। वो कह रहे हैं कि आपने अब इतनी कृपा दी है, ये मेरा शरीर पुनर्जीवित कर दिया है, सारा रोग दूर कर दिया है, परंतु मुझे डर है कि इसके वजह से वो जो रोग है अहंकार का, वो न आ जाए मेरे अंदर। वो कुष्ठ रोग से भी ज्यादा खतरनाक है, अहंकार का रोग, नाम प्रतिष्ठा का रोग। अब लोग जो आकर मेरा गुणगान करेंगे तो पता नहीं वो अहंकार के रोग से मैं बच पाऊंगा कि नहीं। तो देखिए, ये उनकी चेतना थी। इसलिए ज्यादा पीड़ा अब उनको हो रही थी, जब वो सारे कीड़े उनके घावों में थी, कोई पीड़ा नहीं थी उनको, अब उनको पीड़ा हो रही है। ये डर उनको सता रहा है, कहीं मैं अहंकारी न बन जाऊं। जैसे एक दफा सूरदास जी और तुलसीदास जी, जानते हैं आप दोनों, तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हुए और सूरदास जी भगवान कृष्ण के, तो दोनों वृंदावन में आए गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो गोवर्धन परिक्रमा जब कर रहे थे तो अचानक वहां पर समाचार फैला कि एक पागल हाथी गोवर्धन के निकट घूम रहा है, तो यहां पर जो भी है सब भागो, अपनी जान बचाओ। तो ये दोनों चल रहे थे तो ये समाचार आकर सबसे पहले इनको दिया, बड़े महानुभाव आए हैं तो इनको बचाना चाहिए, तो समाचार दिया कि भागो यहां से, अपने आप को बचाओ, पागल हाथी घूम रहा है और वो मार रहा है, रौंद रहा है लोगों को अपने पैरों के नीचे। तो सूरदास जी भागने लगे तो तुलसीदास जी ने रोका, भागते क्यों, क्या तुम्हें अपने भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं कि वो तुम्हारी सहायता करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी समय नहीं है, मुझे भागने दो। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई इतनी भक्ति है तुम्हारी कि ऐसे समय पर तो भक्ति परखी जाती है। तो सूरदास जी ने कहा कि आप भी चलो मेरे साथ, फिर बाद में हम लेक्चर एक दूसरे को देंगे। तो हाथी सामने से आ रहा था तो सूरदास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अपने आप को वहां पर बचाने के लिए रख दिया। और तुलसीदास जी ने सबको कहा, मेरे जो श्री रामचंद्र जी हैं वही एकमात्र मेरे रक्षा के स्रोत हैं, और कोई पेड़ इत्यादि की मैं शरण ग्रहण नहीं करेगा। तो भगवान श्री राम को पुकारने लगे, और जैसे ही भगवान श्री राम को पुकारने लगे, नाम लेने लगे, तो वो हाथी सामने से भाग कर आ रहा है, पागल हाथी, सारे गांव वाले देख रहे हैं, परंतु ये भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। और वो हाथी भागते 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 वो बगल से निकल गया। तो अब पूरा गांव आया वहां पर, ब्रजमंडल आ गया और सब आकर, अरे आज हमने साक्षात देख लिया कि आपकी भक्ति आपके प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में कितनी ज्यादा गहरी है, कि ये पागल हाथी जो सबको मार रहा था, आज भगवान श्री रामचंद्र ने व्यक्तिगत रूप से आपकी रक्षा की। तो सब कुछ हो गया, फिर सूरदास जी नीचे उतरे तो फिर ये पूछते हैं कि भाई अब बताओ कि क्यों तुम डर के मारे भगवान को क्यों नहीं बुलाया तुमने कृष्ण को? तो सूरदास जी कहते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं ये छोटी सी बात के लिए अपने भगवान श्री कृष्ण को तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। और ठीक है, आप उस पागल हाथी से तो बच गए, परंतु ये जो प्रतिष्ठा का हाथी अब जो पीछे पड़ा है, लोग जो गुणगान कर रहे हैं, इससे कैसे बचोगे? तो मैं उस हाथी से बचना चाहता था। ये जो नाम प्रतिष्ठा का जो हाथी है, उस हाथी से मैं बचना चाहता था, वो सबसे पागल हाथी है, इसीलिए मैं ऊपर चढ़ा था। तो अब इस हाथी से आप डील करो, मैं चला। तो वैसे यहां पर वासुदेव ब्राह्मण वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो चले जाओगे यहां से, परंतु ये जो अहंकार अब मेरे अंदर आ जाएगा, कि मेरा उद्धार व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर कैसे किया। बाकियों को तो कृष्ण प्रेम दिया, परंतु आपने कृष्ण प्रेम भी दिया, उसके साथ साथ मेरा जो शरीर है उसे भी इतना सुदृढ़ बना दिया, तो पता नहीं मैं इसे झेल पाऊंगा कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं, प्रभु कहे कभू तो मार न अभे अभिमान, निरंतर कह तुमी कृष्ण कृष्ण नाम। प्रभु कहे कभू तुमार न हबे अभिमान, उन्होंने कहा कि कभी तुम्हें अभिमान नहीं होगा, और वो इलाज दे रहे हैं इस रोग का। इस रोग का इलाज क्या है, इस अहंकार का इलाज क्या है, निरंतर लबे कृष्ण कृष्ण नाम, यही एकमात्र इलाज है इस अहंकार का हमारे हृदय के अंदर, कि निरंतर रूप से हमें क्या लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर रूप से यदि हम भगवान श्री कृष्ण का नाम इस प्रकार से लेते रहें, तो ये है वाणी श्री चैतन्य महाप्रभु की, जो बता रहे हैं कि ये अभिमान छुएगा तक नहीं। और इस प्रकार से उन्होंने वासुदेव ब्राह्मण की रक्षा की और उनको कहा कि यदि तुम इस आदेश का पालन करोगे, हर समय कृष्ण नाम लेते रहोगे और इसके साथ साथ दूसरों को कृष्ण नाम देते रहोगे, कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार अचिराते कृष्ण तोमा करिबे नंगीकार, कि यदि तुम जीवों का निस्तार करोगे ये कृष्ण नाम देते हुए, तो उनका भी उद्धार होगा और स्वयं तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब इस अध्याय को अंत कर रहे हैं और वो कहते हैं, वासुदेव धार एई कहिलाख्यान, वासुदेवामृत प्रद हैल प्रभुर नाम, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक और नया नाम मिला इस प्रसंग के पश्चात। वासुदेव उद्धार एई कहिल आख्यान, ये जो आख्यान मैंने आपको कहा वासुदेव उद्धार का, इसके कारण भगवान को नाम मिला वासुदेवामृत प्रद। जिन भगवान ने वासुदेव को अपनी अमृत कृपा प्रदान की, तो चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम है वासुदेव अमृत प्रद। ये चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम इस घटना के पश्चात उन्हें मिला। और इसके अंत में, इस प्रसंग के अंत में बहुत ही सुंदर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें आश्वासन देते हैं, श्रद्धा करी ए लीला ये करे श्रवण, अची राते मिले तारे चैतन्य चरण। वो कहते हैं, श्रद्धा करी ए लीला ये करे श्रवण, जो श्रद्धा से इस लीला का श्रवण करता है तो क्या प्राप्त होगा उसे, अची राते मिले तारे चैतन्य चरण, कि शीघ्र अति शीघ्र उस श्रोता को जिसने श्रद्धा से इस लीला का श्रवण किया है, शीघ्र अति शीघ्र उस श्रोता को श्री चैतन्य चरण प्राप्त होंगे। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। प्रश्न अब है कि हमने श्रद्धा से श्रवण किया है कि नहीं। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब इस अध्याय का अंत कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं, चैतन्य लीलार आदि अंत नाही जानी, से लिखी ये महांतरे मुख सुनी। मुझे चैतन्य लीला का कोई आदि अंत नहीं दिख रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या सुनाऊं, कहां से सुनाऊं, कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं। से लिखी ये महांतरे मुखे सुनी, जो मैंने महान भक्तों के मुख से सुना है वही मैं अब आगे सुनाऊंगा आपको। और फिर वो कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यारास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, कि श्री रूप रघुनाथ इनके जो चरण कमल है यही एकमात्र आशा है मेरी। और इसलिए वो कहते हैं चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास, और इस प्रकार से मैं उनकी कृपा के वजह से ये चैतन्य चरितामृत सुना रहा हूं। तो यहां पर इस प्रसंग से इस अध्याय का वो अंत कर रहे हैं, और आगे चैतन्य महाप्रभु अब किन किन मायावादियों का, जो बौद्ध थे उनका, और एक बहुत ही प्रगत भक्त थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट, उनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने आगे कब किया, कैसे किया, इसकी चर्चा हम करेंगे कल। बोलो पतित पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।